टीका का संज्ञान।
जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, करो निरंजन ध्यान, जय महावीर भगवान। पावन नाम तुम्हारा मंत्राक्षर प्यारा, हो प्रभु मंत्राक्षर प्यारा, मेरी सरल हरि पर, मेरी सरल हरि पर, उठे एक गीतान, जय महावीर भगवान। राग द्वेष विजेता सिद्धि सदन नेता, हो प्रभु सिद्धि सदन नेता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, मिटे सकल व्यवधान, जय महावीर भगवान। अनेकांत उत्साता अनुपम सुख दाता, हो प्रभु अनुपम सुख दाता, जन्म जन्म के बंधन, जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संहार, जय महावीर भगवान। आधि व्याधि की माया मिटे प्रेत छाया, हो प्रभु मिटे प्रेत छाया, आत्म शक्ति जग जाए, आत्म शक्ति जग जाए, लघु भी बने महान, जय महावीर भगवान। भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा, हो प्रभु तोड़ रहा घेरा, तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय बन कर तुलसी, करूं सदा संगान, जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। आराध्य के श्री चरणों में वंदना, वंदनीय स्वामी जी और मधु। भगवान महावीर ने जो हमें मार्ग दिखाया, जो सत्य बताया, उसे अगर हम ब्रीफ करना चाहें, बहुत सारे प्रवचन होते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, किंतु ऐसा कोई ऐसा गुर, ऐसा सीर कॉन्सेप्ट अगर हमारे हाथ में लग जाए, जो कि जहाँ पर भी अप्लाई करे वहाँ भगवान का जो सत्य है वही दिखाई दे, तो वो बीज सूत्र क्या है? बहुत सारा हो सकता, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसे मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं और सारे आंसर सही हो सकते हैं। एक सूत्र जो भगवान ने दिया वो था उत्पन्नैवा मृगमैवा धुवैवा। गौतम स्वामी ने भगवान को प्रश्न किया कि भगवान दुनिया है, जो सत्य है वो क्या है? तो भगवान ने कहा सब कुछ उत्पन्न होता है। तो गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि अगर सब कुछ उत्पन्न ही उत्पन्न हो जाए, होता रहेगा, तो दुनिया तो भर जाएगी, वहां स्पेस ही नहीं बचेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो भगवान ने उसका फिर उत्तर दिया, जो नष्ट होता है। तो भगवान को जब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भाई सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा दुनिया में, तो फिर बचेगा क्या? तब भगवान ने फिर उत्तर दिया धुवैवा, शाश्वत है। तो जो लोक है या जो संसार है वो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और शाश्वत भी है। तो ये जो सत्य है हम उसे कहीं पर भी अप्लाई करें, इट्स गोइंग टू शो यू द राइट पाथ। हम हमारे जीवन में अब जब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इस सत्य को हर क्षण सामने रखते हैं। क्लियर है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप खरीदते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन उसका हुआ है और उसको आप यूज करते हो। यूज करने के बाद कुछ देर उसको रखते हो, उसके बाद यू थ्रो योर सेल्फ दैट प्रोडक्ट इन टू द रिसाइकलिंग प्रोसेस। अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालते हैं या नहीं भी डालते हैं तो इट गोज टू द गार्बेज कैन। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। प्रोडक्शन होता है इसलिए खरीदना ही पड़ेगा, ये सच है, या खरीदते हैं इसलिए प्रोडक्शन होता है? जितना प्रोडक्शन है दुनिया में वो इसलिए है क्योंकि आप खरीदते हो, या द अदर वे राउंड, प्रोडक्शन होगा तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। एक सरदार जी रस्ते में जा रहे थे, चलते चलते उन्होंने देखा कि केले का छिलका उनके सामने आ गया। उन्होंने क्या करे, अरे आज भी गिनना पड़ेगा। कल केले को छिलकों को देख करके उनका पैर स्लिप हो गया था, और आज वो क्या सोचते हैं, सेल के जब कूपन आते हैं तो क्यों आते हैं, समझी जी, खरीदना तो पड़ेगा ना? नहीं? तो हमारे जीवन में उत्पन्न और नष्ट होने का ये जो चक्र है वो हमें सामने दिखाई भी देता है, हम उसको जीते भी हैं। एवरी मोमेंट वी लिव। आप बर्थडे भी जब मनाते हो, बर्थडे जब मनाते हैं तो फिर उस समय क्या होता है, हमारा जन्मदिन हम मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साथ जन्मदिन से हटकर जाते हैं और मृत्यु के पास जाते हैं, हम उसी को मनाते हैं। तो ये भी उत्पन्न और नष्ट जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। एनी थिंग इफ देर इज प्रोड्यूस देर इज समथिंग विच इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। कहीं ना कहीं कुछ नष्ट होता है तभी कोई ना कोई चीज उत्पन्न होती है। नष्ट होना और उत्पन्न होना दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमें जो चीज उत्पन्न हो रही है वो भी दिखाई देती है, जो चीज नष्ट हो रही है वो भी दिखाई देती है। हम उत्पन्न हुई चीज से उसके प्रति अटैचमेंट रखते भी हैं और उसके प्रति डिटैच भी हो जाते हैं, होते ही हैं। जो भी चीज आप चेंज करते हो, आप अपना फोन चेंज करते हो, कार चेंज करते हो, ड्रेस चेंज करते हो, आजकल संबंध चेंज करने लग गए, तो जो कुछ चेंज हो रहा है उसके प्रति डिटैचमेंट भी चल रहा है। किंतु जो उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में जो शाश्वत सत्य है हम उसको देखते हैं क्या? देखते हैं वो शाश्वत सत्य, चाहे पदार्थ का हो या आत्मा का हो, कहीं पर भी हमें सत्य अगर वो दिखाई देने लग जाए, देन यू आर आउट ऑफ मिजरी। वो हमारी आत्मा ही हमें दिखाई दे 24/7 जरूरी नहीं है। पदार्थ में भी अगर वो दिखाई देने लग जाए तब भी, जैसे आगम ने सूक्त कहा है, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया, जे एगम जाने से सबम जाने। चाहे वो पदार्थ है या आत्मा है, किसी एक को भी अच्छी तरह से हमने अगर समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है, देन वी नो एवरीथिंग। एक घटना है, एक सेठ थे, उसका उनका नाम था धन सेठ, और उनकी बेटी थी दत्ता। अब दत्ता सात भाइयों की इकलौती बेटी, तो सबने उसको लाड़ प्यार से बड़ा किया। अब जब लाड़ प्यार ज्यादा हो जाता है तो बच्चे बिगड़ते भी हैं, तो वो भी थोड़ी सी बिगड़ गई, बिगड़ी ऐसे कि उसने ये संकल्प कर लिया कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जो कि मेरे कहे अनुसार चले। अब फिर उसमें जब ये बात पॉपुलर हो गई तो प्रॉब्लम भी हो गई, बट इवेंचुअली समहाउ देयर वाज वन मिनिस्टर, धनवान सेठ था, सुंदर लड़की थी, उसने उससे शादी कर ली, सुबुद्ध उसका नाम था, उसने उसके साथ शादी कर ली। अब ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे प्रसंग आते कि वो घर देर से आता तो उसको बुरा लगता, वो नाराज होती। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको गुस्सा बहुत तेज आता था, तो गुस्सा इतना तेज हो गया उसका कि वो घर छोड़ करके चली गई। गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो वो घर छोड़ के तो चली गई। अब आधी रात घर छोड़ के गई है, सुंदर लेडी है और सेठ की पत्नी है, सेठ की बेटी है, तो नेचुरली गहने से सजी धजी थी। रास्ते में कौन मिलता है आधी रात को? चोर मिले, और चोरों ने अपने सरदार के पास उसको लेके गए। सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ा मूल्यवान चीज मिली है, तो दे टू सरदार। सरदार ने सोचा कि भाई धन तो ठीक है, इसके साथ शादी करेंगे तो आनंद है, तो उसने प्रपोज किया, मगर लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, शादी तो मैं नहीं करूंगी। तो जो कुछ धन था उन्होंने लिया, और उस चोर के सरदार ने सोचा कि भाई ये मेरे क्या काम की, तो उन्होंने उसे एक ऐसे इंसान को भेज दिया जो ब्लड का लाइक ब्लड सेलिंग का काम करते थे। तो दे सोल्ड हर टू दैट मैन। अब वहां पर वो गई, उसने क्या किया, इसका खून लिया और उसे बेचने लगा, तो उसके शरीर की हालत खस्ता हो गई, एनर्जी रही नहीं। जब व्यक्ति के साथ जो स्थितियां गुजरती हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका जो कदम था वो कितना गलत था। अब उसे एहसास हुआ कि व्हाट अ ब्लंडर मिस्टेक शी हैज मेड बाय लिविंग द हाउस, और उसके उस एहसास के साथ ही उसे ये आभास हुआ, उसका जो क्रोध था, उसकी जो उत्तेजना थी, वो भी जब व्यक्ति को समझ पड़ती है तो बदलने में टाइम नहीं लगता है, तो उसका भीतर का भी बदलाव हो गया। सिचुएशन ऐसे बने कि चलते फिरते कहीं उसको उसका भाई मिल गया और वो वापस घर लौट आई। घर लौट आई, अब उसमें जो पहले की जो दत्ता थी और अब की जो दत्ता है, इट्स डे एंड नाइट। दिन एक सत्य है तो रात भी एक सत्य है। तो जो पहले उसको उत्तेजना थी वो टोटली चेंज हो गई। हुआ ऐसे कि किसी देवता को ये पता चला कि शी इज वेरी पीसफुल, काम एंड नेवर एवर एंग्री, तो उसने सोचा कि मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए। उसने सेठ साधु का वेश धारण किया और दत्ता के घर पे पहुंच गए, और उन्हें औषधि के रूप में उस जमाने में बहुत सारे प्रकार के तेल हुआ करते थे, तो एक प्रकार का तेल था जो था लक्ष्यपाक तेल। लक्ष्यपाक तेल बहुत कीमती, बहुत सारे प्रेशियस कमोडिटी से वो बनता था। तो साधु ने कहा कि हमें इसकी जरूरत है, तो उसने कहा कि हमारे पास तो है, तो उसने अपनी दासी को कहा कि वो जो मटका है लक्ष्यपाक तेल का, तो उसे ले आओ। जो साधु थे वो साधु तो थे नहीं, वो तो देवता थे, एंड ही काइंड ऑफ लाइक ब्रोक दैट पॉट बाई हिज ओन पावर्स। तो घड़ा मटका वो जो था वो टूट गया, फूट गया तो तेल भी गया नीचे। तो दासी को बहुत लाइक शी वॉज पजल्ड कि अरे मेरे हाथ से ये टूट गया, इतनी कीमती चीज है वो चली गई, और वो भी साधु के लिए दवाई के रूप में काम आ सकती थी। तो उसने कहा कि भाई जो चीज आई थी उसको तो जाना ही था। अब जो चीज आई थी उसे जाना ही था, ये क्या है? उत्पन्न और नष्ट साथ साथ होते हैं, साथ साथ चलते हैं, जहां उत्पन्न होना है वहां नष्ट अवश्य होना है। साधु वही, वो जो देवता थे वो वही रुके नहीं। वो उसने कहा कि कोई बात नहीं साधु महात्मा, मेरे पास दूसरा घड़ा भी है, दूसरा भी फूट गया। जब तीसरा घड़े की बारी आई तो तीसरा भी, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका आपा नहीं टूटा। जब कभी होता है ना कि घर में कोई ग्लास फूटती है, सिर्फ ग्लास ही फूटती है या उसके साथ और कुछ भी टूटता है? ग्लास की आवाज तो होती है। तो ये जो है, हम पदार्थ से जो अपना अटैचमेंट या माइंडनेस रखते हैं, व्हाट इज दिस? हम इस तथ्य को वैसे तो जानते हैं कि भाई जब हमें फेंकना है, पुरानी हो गई है, तब हम गिराते ही हैं। और तो आजकल तो मॉडर्नाइज तरीके से गिराते हैं, वी डोनेट इट, कि भाई जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको डोनेशन में दे देते हैं, और इसकी भी खुशी मनाते हैं कि सी वी डोनेटेड सो मच ऑफ स्टफ। होता है जब हेटी में भी हुआ था, या बहुत जगह ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो लोगों को, जैसे एक बच्चा था तो उसने अपना खिलौना, उस दिन बर्थडे पे नए खिलौने मिलते थे, तो उसके पेरेंट्स ने कहा था कि पुराना तो छोड़ोगे तब नया मिलेगा। तो दैट कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे कुछ छोड़ना है और फिर मुझे नया मिलेगा, इट्स वंडरफुल थिंग। बट हम उसके साथ और ईगो भी रखना चाहते हैं कि हमने केवल छोड़ा ही नहीं है, उसे किसी को दिया है। वास्तव में देने में देना अच्छा है या छोड़ना अच्छा है? बट हम केवल छोड़ पाते हैं क्या? हम इस सत्य को जानते हैं कि नष्ट होता है, जो आता है वो जाता है, लक्ष्मी आएगी तो जाएगी। वी लिटरली गिव समथिंग, बट इज द गिविंग डिटैचमेंट? हम उससे हटते हैं क्या? अपनेपन, अपनापन है तभी तो अहंकार है। अगर आपके मन में ये नहीं कि ये मेरी चीज है, तो मैंने दिया ये भी भाव नहीं आएगा। जब ये भाव आता है कि मैंने दिया, क्यों? क्योंकि वो आप अपना समझ रहे हो। आपका क्या है? जो दत्ता थी उसने यही कहा कि मेरा क्या है, तेल मेरा कहाँ था? 1 साल का पहले तेल मेरे पास नहीं था, तो क्या वो मेरा था? नहीं था। 1 साल तक वो मेरे पास रहा, और नेचुरली है कि उसको कहीं जाना था। तो मेरा तो वो होता है जो इट इज ऑलवेज विथ यू, जो आपको धोखा नहीं दे, आपको छोड़ करके नहीं जाए। आप पत्नी को, माँ को मेरा क्यों कहते हो? क्योंकि आपको विश्वास है कि ये जन्म भर का साथ है, राइट? जीवन भर का जब साथ है तो मेरा है। गाड़ी को भी आप कहते तो मेरा ही हो कि भाई मेरी गाड़ी है, बट यू नो द डिफरेंस बिटवीन मेरी पत्नी एंड मेरी गाड़ी, राइट? देर इज अ डिफरेंस। तो जब हम इस सत्य को समझते हैं कि उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उसके बीच का जो तत्व है वो है ध्रुव, यानी शाश्वत। दुनिया में अपना कुछ होता ही नहीं है। जो शाश्वत सत्य है वो है कि एग्जिस्ट करता है, हर चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे आत्मा एग्जिस्ट करती है, पदार्थ एग्जिस्ट करता है, राइट? और हमारा और पदार्थ का, दो आत्माओं का, दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का संबंध होता है। वी ऑल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप, और ये संबंध बनते हैं, छूटते हैं, किंतु जो संबंधित हुए थे वो कभी नष्ट नहीं होता। तेल जो है वो नष्ट हो गया, वास्तव में वो नष्ट हुआ क्या? इट जस्ट वेंट इन टू द मड, मिट्टी में मिल गया, वो फिर किसी न किसी रूप में बदल गया। तो जो अस्तित्व है, चाहे वो पदार्थ का है, व्यक्ति का है, खत्म नहीं होता। आत्मा भी मरती नहीं है, पदार्थ भी बदलता है, व्यक्ति भी बदलता है, आत्मा भी बदलती है। तो जो शाश्वत कोर एग्जिस्टेंस है, हम उसको समझने का प्रयत्न करें। जब तक हमने उस कोर को नहीं पकड़ा, तो अपने भीतर खालीपन देखेंगे। जब तक अपने भीतर खालीपन देखेंगे, हम अपने आप को भरने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्ति जब बाहर से कुछ चाहता है तो क्यों चाहता है? क्योंकि भीतर में खाली है। व्यक्ति को बाहर से प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, किसी ने आपकी, हमारी प्रशंसा कर दी तो हमको खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि देर इज अ वैक्यूम विद इन अस, वी आर ट्राइंग टू फिल इट। एक बार एक सेठ जी ने एक दावत रखी, और दावत में बहुत सारे लोगों को बुलाया। तो उन्होंने, जैसे इंडियन स्टाइल में पापड़ इज टू बी सर्व, राइट? पापड़ के बिना भोजन अधूरा ये माना जाता था। अब तो फिर भी कॉन्सेप्ट चेंज होने लग गए, बट पापड़ शुड बी देयर। तो लास्ट में सेठ जी ने सोचा कि पापड़ तो मैं सर्व करूंगा, तो उन्होंने सबको पापड़ सर्व किया। करते करते ऐसा हुआ कि जब एक व्यक्ति उनके उनके गेस्ट थे, ही वॉज नॉट दैट रिच, ही वॉज वेल टू डू पर्सन, उन्होंने उनको भी पापड़ सर्व किया, तो सर्व करते करते पापड़ टूट गया। तो जिसको पापड़ सर्व किया गया उसने सोचा कि भी मेरे पहले जितने भी बैठे थे वो थे रिच पीपल, एंड उनके उनको जब पापड़ सर्व किया तब तो नहीं टूटा, मेरे नंबर लगा तभी टूटा। इसका मतलब सेठ जी के मन में खोट है, ही इज लाइक डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मी एंड अदर्स। और वो छोटी सी बात, पापड़ टूटने की बात दिमाग में पकड़ ली। अब कुछ टाइम बीता तो लगा कि भाई वापस टिट फॉर टैट, सेठ जी को बताना तो पड़ेगा भी कि दिस इज नॉट राइट। तो उसने सोचा कि मुझे भी एक दावत देनी है, एंड ही लाइक थ्रू अ पार्टी बहुत फैबुलस, और सेठ जी के बराबर का कुछ करना था तो उतनी तो हैसियत थी नहीं, तो ही टुक सम लोन, मेड श्योर दैट लाइक ही इज नो लेस देन सेठ जी, इट वॉज नो लेस देन सेठ जी पार्टी। सब कुछ हुआ, पार्टी का जो फाइनल पापड़ सर्व करने का टाइम आया, क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर दैट राइट, तो पापड़ सर्व करने का टाइम आया तो उसने पापड़ सर्व करना शुरू कर दिया। सेठ जी को भी पापड़ सर्व किया तो सेठ जी वॉज नॉर्मल, क्योंकि उस दिन जब पापड़ टूटा तो सेठ जी को कुछ लाइक लगा भी नहीं कि इट्स बीन अ ब्लंडर थिंग फॉर हिम। तो आज भी पापड़ सर्व हुआ, हो गया, एंड ही वॉज जस्ट लाइक एंजॉइंग एवरीथिंग। तो इस व्यक्ति को लगा कि बात क्या है, मैंने इतना सब कुछ किया वो व्यर्थ हो गया। सेठ जी को एहसास ही नहीं हुआ, जब तक एहसास कराने के लिए किया था सारा, जब एहसास नहीं हुआ तो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। तो उसने सोचा कि आखिर बोलना ही पड़ेगा, तो उसने कहा कि सेठ जी आपको याद है उस दिन जब आपने मुझे पापड़ सर्व किया था वो टूटा हुआ था। सेठ जी ने कहा किस दिन, कौन सा पापड़? तो ही काइंड ऑफ लाइक रिमाइंडेड हिम कि वो उस दिन, तो व्यक्ति के भीतर में वो पापड़ जो टूट गया वो टूटा हुआ पापड़ क्यों रहा? भीतर में व्यक्ति टूटा हुआ है, खाली है, सिलेंडर ब्लैंक है, तो अपने आप को किसी बाहर से भरना चाहता है। तो हम ये सोचे कि हम जब बाहर से कुछ अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो नाम की, पदार्थ की, अप्रिशिएशन की, और एनी मटेरियल थिंग, मदर्स डे था और बच्चे मदर्स डे पे कार्ड भेजना भूल गए, तो माँ क्या करती है? बुरा तो लगता है माँ को, माँ तो कुछ बोलती नहीं है, वो खुद बच्चे को नहीं बोलेगी, वो हस्बैंड को बोलेगी कि सी ही फॉरगॉट, और फिर फादर है इज गोइंग टू काइंड ऑफ रिमाइंड द चाइल्ड, एंड देन द चाइल्ड एक्चुअली सेंड्स द कार्ड। हम ये सारे कार्ड में क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि हम चाहते हैं बाहर से, हम अपेक्षा रखते हैं। सी एट सम पॉइंट वी डू थिंग्स टू लाइक मेक श्योर टू नर्चर आर कल्चर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स नॉट ऑलवेज फॉर कल्चर, वी डू इट फॉर आर इवन ईगो थिंग। तो जब हम इन सब उलझनों में उलझे हुए हैं, जो चीज उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, जो मेरा नहीं है, उसको हम जानते हुए भी उसमें मेरेपन को जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर में खालीपन है। तो भगवान की जो साधना थी वो उस बीच के तत्व को खोजने की साधना थी, जो है शाश्वत सत्य। आत्मा का जो असली स्वरूप है वो ज्ञानमय है, आनंदमय है। हमारा ज्ञान भी हर क्षण जैसे नया नया ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान हम आज इसका कर रहे हैं, कुछ कभी किसी और का करते हैं, तो दैट इज फाइन। वो वहां पर भी हमारा स्वरूप क्या है? ज्ञानमय है। हम अपने स्वरूप में उत्पन्न होने वाली अवस्थाओं को समझते हैं, जीते हैं। जैसे आनंद है, आनंद हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, टू बी हैप्पी, मगर वो हैप्पीनेस कैसा है? इट्स नॉट सुख। सुख होता है, कंडीशनल होता है, सुख आता भी है और जाता भी है। वो आता और जाता क्यों है? क्योंकि वो भी अशाश्वत है, वो भी उत्पन्न होता है, वो भी नष्ट होता है। एवरीथिंग ओरिजिनेट, जैसे ओशन होता है, ओशन में टाइड्स ऊपर उठती हैं और डिसअपियर होती हैं, तो सुख भी आता है और जाता है, वो भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, किंतु उस उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में जो है वो है आनंद। हम सुख के बाद दुख होता है और दुख के बाद फिर सुख आता है, तो हम इन दो अगर छोरों को छोड़ दें देर इज रिवर एक्चुअली, एक तट है सुख का, दूसरा तट है दुख का, और उसके बीच का तट हो गया। जो बीच तट में हम नहीं जाएं, हम बीच में अगर रहें तो हम नदी में हैं। हमको आगे ले जाने वाला तट है या नदी है? तट पर खड़े रहेंगे तो या तो सुख की अनुभूति करेंगे या दुख की अनुभूति करेंगे, किंतु अगर हम नदी में हैं, नौका में बैठे हैं, तो वो हमें आगे ले जाती हैं, और वो शाश्वत चीज क्या है? आनंद। तो हम सुख और दुख के अगर परे चले, जो कंडीशनल है वो नष्ट होगा ही होगा, जो कंडीशन में उत्पन्न होता है वो हमारे साथ शाश्वत रह नहीं सकता। तो हम इस बात को समझे कि हम अनकंडीशनल आनंद की अनुभूति करें। भगवान की जो साधना थी वो, जैसे कहते हैं कि प्रतिपाती एक अवस्था होती है, एक अप्रतिपाती होती है। प्रतिपात का मतलब गिर जाना, अप्रतिपात का मतलब जो वापस गिरता नहीं है। जिस हाइट पर हम पहुंच गए हैं, देर इज नो डाउनफॉल, देर इज नो डिक्लाइन, देर इज नो कमिंग डाउन। अब ये है कि लक्ष्मी भी प्रतिपाती हो सकती है, प्रतिपाती होती है क्योंकि वो आती है और चली जाती है। ऐसी क्या चीज है जो अप्रतिपाती है, जो आने के बाद जाती नहीं है? ज्ञान है और आनंद है। हम ज्ञान किस लिए करते हैं? आनंद के लिए करते हैं। और आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि वही हमारा स्वभाव है, वही हमारा नेचर है, वही हमारा असली एग्जिस्टेंस है। बाकी के जो एग्जिस्टेंस है वो तो क्या है? संबंध है, फर्क की एग्जिस्टेंस है। एक तो मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, एक पुस्तक एग्जिस्ट कर रही है, राइट? दोनों में डिफरेंस है। इज दिस बुक मी, इज दिस बुक माइंड? मी तो नहीं हूं, समझ में आता है, बट इज दिस नॉट माइंड? जैसे हम किसी से पूछ रहे थे कि ये टिफिन आपका है क्या, तो उन्होंने बहुत अच्छा सा उत्तर दिया, टिफिन तो समझी जी स्टील का है, मेरा कहाँ हुआ। तो वास्तव में पदार्थ तो पदार्थ है वो। आप जैसे साधु के पास कोई चीज होती है तो हम उसको कहते हैं मेरी नेश्राय में है। नेश्राय में है मतलब इट्स इन माई शेल्टर एंड यूजिंग इट फॉर अ वाइल, ये मेरी नेश्राय में है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझे कि जो कुछ भी आपके पास है वो आपका नहीं है, आपकी नेश्राय में है। आपकी नेश्राय में है तो आप उसको टेक केयर भी करोगे। ऐसा नहीं कि भाई जो पदार्थ आपके साथ जिसका संबंध हुआ है उसको आप नेग्लेक्ट करोगे, टेक केयर नहीं करोगे, वो तो ठीक है, टेक केयर करना पड़ेगा, बट डू नॉट आइडेंटिफाई दैट एज योर्स। मेरीपन को जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे वहां पर, तब तक हम आनंद जो तट पर हम अटके रहेंगे, सुख और दुख में कंडीशनल सिचुएशंस में अटके रहेंगे, कंडीशनल सिचुएशंस में को ही हम खोजते रहेंगे। कंडीशनल जॉय है, कंडीशनल जॉय के बाद नेचुरली हम दुख में जाएंगे। कुछ पाते हैं तो खुशी होती है, फिर वो खोते भी हैं तो वहीं पर गम भी होता है। तो हम अपने संसार के असली स्वरूप को समझें कि सब कुछ उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में द्विंद कर रहा है, बट उसके बीच में जो आत्मा है, चाहे पदार्थ है, वो शाश्वत है। और जब हम शाश्वत सत्य को देखने लगते हैं तो हम समता में जीते हैं। जब भगवान ने कहा कि ये समता धर्म है, समता में रहना है, तो हम शाश्वत सत्य को देखें और उसके लिए राग और द्वेष की आंख को बंद करना जरूरी है। राग भी क्या है? उत्पन्न होता है, नष्ट भी होगा। द्वेष भी है, वो भी उत्पन्न होता है, वो भी नष्ट होता है। इट नेवर स्टेज एवर फॉर विकास, मतलब किसी के साथ भी कोई भी कितना भी द्वेष हो जाए, उसको कहीं ना कहीं तो खत्म होना ही पड़ेगा। देर शुड बी एन एंड टू इट। राग है, वो भी खत्म होता है। तो राग भी उत्पन्न होता है, द्वेष भी उत्पन्न होता है, दोनों का स्वरूप क्या है? नष्ट होना। किंतु समता जो है, न राग की अवस्था है न द्वेष की अवस्था है, वो शाश्वत सत्य की अवस्था है। तो हम उस समता में जीने का प्रयत्न जब करते हैं, जब भगवान महावीर को चंद कौशिक ने डंक लगाया तो वो समता में थे, न राग था न द्वेष था, वो अशाश्वत चीजों में नहीं उलझे, उन्होंने शाश्वत स्वरूप की खोज की। हम जो संसार का जीवन जी रहे हैं उसमें कहाँ पर हम बैलेंस रख सकते हैं? इज इट पॉसिबल इवन? आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन कि ये पॉसिबल है क्या कि हम कंडीशनल चीजों में नहीं उलझे, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में नहीं उलझे? इज इट पॉसिबल? डिटैचमेंट का मतलब ही हो गया ना कि आपने उस जैसे कहा निश्राय में है, राइट? दसवें कालिक में एक सूत्र कहा गया है कि मुच्छा परिग्रहो वित्तो, मूर्छा परिग्रह है, पदार्थ परिग्रह नहीं है। जैसे आनंद श्रावक थे, उनके पास पदार्थ कितना था? ही वॉज अ मिलियनर बिलियनर इन हिज टाइम, बहुत कुछ था उनके पास। बट वॉट वॉज हिज कंजम्पशन? उनकी कंजम्पशन में की लिस्ट में दो ड्रेस थी, एक टॉवल था, एक स्लिपर्स की जोड़ी थी। आई एम गिविंग अ वेग नंबर्स, बट ही फॉर हिमसेल्फ उन्होंने अपनी एक लाइन खींच ली थी, राइट? तो पदार्थ का होना मूर्छा नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। पदार्थ के प्रति आसक्ति का होना अटैचमेंट है। जब हम ये कहते हैं कि सुख और दुख में उलझना नहीं है, तो जब सिचुएशंस आती हैं, डू वी गेट काइंड ऑफ एक्सप्लोडेड बाय दैट सिचुएशन? वी कैन कंट्रोल आर सेल्फ। एक कहानी शायद कई बार आपने सुनी होगी, एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई। तो लॉटरी लग गई तो सबने सोचा कि भाई इसको अभी बता देंगे लॉटरी लग गई है, और वो भी 1 मिलियन की, तो कहीं उसको हार्ट फेल नहीं हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक तरीके से उसको बताना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर को भेजा और उसको कहा कि भाई सपोज आपको लॉटरी लग जाती है $100 की, तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि आधा आपका आधा मेरा। तो फिर उसने कहा कि 1,000 की लग जाए तो कहा कि फिर भी आधा आपका आधा मेरा। ऐसे करते करते वो कहाँ पर पहुंच गए, मिलियन बिलियन तक पहुंच गए। और फिर उसने क्या कहा, आधा आपका आधा मेरा। जब डॉक्टर ने ये सुना कि आधा मेरा है, हार्ट अटैक किसको हुआ? तो प्रॉब्लम होने में नहीं है, हमारा दृष्टिकोण उस पदार्थ के प्रति क्या है, दैट इज अ बिग डील। जैसे लक्ष्य पाक तेल बहुत कीमती चीज है, और वो अगर मिट्टी में मिल गया है एंड द पर्सन इज न्यूट्रल, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दिस कि दुनिया में बहुत कुछ हमें प्राप्त भी होता है, चला भी जाता है। डू वी कैन ऑफ गेट हाइपर विथ हाइपर में दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसमें हम न्यूट्रल, 100% न्यूट्रल समता वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम आर सेल्फ, बट हाउ मच वी डू वी बैलेंस आर सेल्फ इन दो सिचुएशंस? हमें अहंकार आता है या हम उसे दुनिया का एक सच मान करके जीते हैं कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये अकॉम्प्लिश किया। ईगो होता है, ईगो बोलता है। हम ईगो को पोषण देते हैं या समता को पोषण देते हैं? डू वी फेवर विच इमोशन ऑफ आस? एक दादाजी थे, उन्होंने अपने बच्चे को ये कहा कि दो पॉक्स हैं, एक गुड पॉक्स है और एक बैड पॉक्स है, और दोनों में झगड़ा हो जाए तो जीतेगा कौन? बताइए कौन सा जीतेगा? वही बैड। संवत्सरी पर्युषण चल रहा है। दादाजी ने कहा कि न गुड और बैड नहीं जीतेगा, जिसको आप खाना खिलाओगे वो जीतेगा। अगर आपने अच्छे से बैड पॉक्स को नर्चर किया है तो नेचुरली बैड ही जीतेगा। अगर आपने गुड पॉक्स को अच्छा खाना खिलाया है, उसको पोषण दिया है, उसको हट्टा कट्टा बनाया है, तो वही जीतेगा। तो हम किसे हट्टा कट्टा बना रहे हैं? हम समता को प्रश्रय देते हैं या अहंकार को प्रश्रय देते हैं? हम अटैचमेंट को प्रश्रय देते हैं, मेरेपन को प्रश्रय देते हैं, या सत्य को प्रश्रय देते हैं? तो एट दोज मोमेंट हम केवल थोड़ा सा आत्मचिंतन भी करें, काइंड ऑफ जस्ट रिफ्लेक्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स कि दिस इज ट्रूथ, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कमिंग एंड गोइंग, तो उस समय में हम बहुत सारे कर्म बंधन से बच सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसमें भी निकासित कर्म का बंधन हो सकता है। बहुत ज्यादा दुखी होते हैं उसमें भी निषाचित कर्म का बंधन हो सकता है। तो कर्म बंधन को हल्का करने का एक जो माध्यम है वो है कि सी ऑब्जर्व थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रूथ एट मोमेंट। आपको अपने दोस्तों को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका थॉट लेवल वो नहीं होगा जो आपका है। इट इज फॉर योर कंटेम्पलेशन, फॉर इट्स फॉर योर नर्चरिंग, फॉर योर थॉट। आपका अपना खाना जो है आप अपने लिए परोसो, ये जरूरी है। आपने वही खाना अगर आपके दोस्त पार्टी में आ जाए और आप उनको अध्यात्म की चर्चा करने लगोगे तो दैट पर्सन माइट नॉट लाइक इट। तो अध्यात्म जो है वो अपने लिए है। बात दूसरों को आप दे सकते हो, परोस सकते हो, वंडरफुल, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू ग्रो विद इन योर सेल्फ। थिंक फॉर योर सेल्फ, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प योर सेल्फ ग्रो स्पिरिचुअली। तो उत्पन्नैव विगमैव ध्रुवैव, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और शाश्वत है। इन तीन शब्दों को हम अपने जीवन में जहाँ कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए अगर रिलेट कर पाते हैं तो वी वुड फाइंड आवरसेल्फ इन मच बेटर पॉजिटिव एनर्जी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हम इस सत्य को समझिए, जिए और अध्यात्म। फॉर एग्जाम्पल लाइक बैलेंस, ये एक्चुअली इट्स अ वेग लाइन। जो व्यक्ति कंसर्न नहीं करता है किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में, लाइक स्टेज अनकंसर्न, जैसे एक माँ को हमने देखा कि उनका बेटा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया और शी डिडंट हैव अ मोमेंट टू कट डाउन हर पार्टी टाइम, हर मूविंग अराउंड विद द फ्रेंड्स एंड काइंड ऑफ लुकिंग टू व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग एंड अकम्प्लिशिंग। तो जो बच्चे को उस समय नर्चरिंग की जरूरत थी, the mother lost the opportunity to kind of like take care of the child's growth or nurture, matlab jaise us samay mein zarurat thi bacche ko ki bhai usko kind of appreciate kare ki you are putting a lot of effort and you are doing a great job in this. So ye matlab agar hamara indifference tab hota hai jab hum duniya ke sach ko bhi gaun karte hain. Jaise hum hamare jeevan mein do cheez hoti hai, ek nishchay nahi ek vyavhar mein. निश्चय नायन का मतलब होता है कि आत्मा शाश्वत है और सब कुछ उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, सत्य है। व्यवहार नए जो है, समाज की जो दुनिया में हम समाज में जो जीते हैं वो व्यवहार नए है। व्यवहार नए में थैंक्स यू गिवन का, थैंक्स गिविंग का सेलिब्रेशन और ऑल दैट मैटर्स टू पीपल, राइट? तो देन यू एक्चुअली कीप अ बैलेंस। बैलेंस में ये जरूरी है कि मूल अध्यात्म जो है वो भीतर का तत्व है। भीतर में हम कितना न्यूट्रल रह पाते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। भीतर में न्यूट्रल रहते हुए भी यू नो दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम एंड यू टेक केयर ऑफ दैट। सो इफ वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम स्पिरिचुअल एनर्जी टू योर पीपल अराउंड, एज आई सेड, दे माइट नॉट बी रेडी फॉर दैट, बट यू कैन बी रेडी। स्पेशली ये खुशी के समय तो आप अप्लाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जब कष्ट का समय होता है, दुख की बात होती है, समथिंग विच यू डू नॉट लाइक, वो जब होता है, दीज थॉट्स एक्चुअली गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप अस बैलेंस, टू डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, टू बी लेस इफेक्टिव राइटिंग। और दिन में मतलब जीवन जो जीते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें हैं वो इरिटेट कर लेती हैं। दीज थॉट्स आर लाइक अराउंड अस, वी कैन कीप आवरसेल्फ मोर बैलेंस इन दोस सिचुएशंस।
यदि चैतन्ये मुकुर इव भावा चिदचित समं भान्ति भोग्य जयजनिलसन्तोन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। सम्मी जी उपस्थित भाइयों बहनों, पर्युषण महापर्व चल रहा है, आध्यात्मिक पर्व। आत्मा को केंद्र में रख करके सारा चिंतन, सारी साधनाएं, सारी पूजा प्रक्रियाएं की जाती है। तो आचारांग सूत्र है जिसका हम लोग विशेष शनिवार को कुछ क्लासेस भी इस पर चला रहे हैं। आचारांग में भगवान महावीर ने एक वाक्य कहा है, उवाही पासगस्त नत्थी। जो व्यक्ति पश्चक होता है, आत्मद्रष्टा होता है, उसकी उपाधि नहीं होती है। तीन तरह की बीमारियां होती है, आधी, व्याधि और उपाधि। आधी शारीरिक बीमारी का नाम है, फिजिकल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको आधी कहा जाता है। मानसिक बीमारी को व्याधि कहा जाता है और भावात्मक इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो उपाधि कहलाती है। तो भगवान महावीर चूंकि जैन धर्म भाव प्रधान है, राग द्वेष मुक्ति की बात करता है, इमोशंस पर ही सबसे ज्यादा अटैक करना है। तो महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मदृष्टा हो जाता है, अपने आप को देखना शुरू करता है, वो उपाधि से मुक्त रह सकता है। जो पश्चक बन जाता है, पश्चक का मतलब देखने वाला, किस चीज को भी देखे, अगर वो केवल देखने की दृष्टि का अभ्यास कर लेता है, केवल ज्ञाता केवल दृष्टा, केवल जाने और केवल देखे, बस इसका अभ्यास कर ले तो उसके लिए कोई समस्याएं नहीं रहती है। किंतु जनरली होता क्या है, देखने के साथ ही प्रतिक्रिया जुड़ जाती है। किसी ने अच्छा काम किया तो उसके प्रति अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, किसी ने बुरा काम किया तो उसके प्रति अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो देखने के साथ हमारा मन कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करता है, वो प्रतिक्रिया अच्छी और बुरी दोनों रूपों में होती है। और कहीं कहीं व्यवहार में ज़रूरी भी होता है कि कोई अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो व्यवहार का जगत है, उसकी उपेक्षा भी हम नहीं कर सकते हैं। और कहीं गलत काम होता है तो उसकी निंदा और आलोचना न की जाए तो सुधार की संभावनाएँ ख़त्म हो जाती है। हमारे भारत में सहिष्णुता का पाठ सभी धर्म पढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा सहिष्णु हो गए, इतने ज़्यादा डिसेंसिटाइज्ड हो गए हैं कि उनको कुछ भी भारत में होता है उसके विरोध में आवाज़ उठाना नहीं आता है। उठाते हैं तो कुछ लोग इतने ज़्यादा सत्ता के मद में होते हैं कि वो उनको दबा देते हैं। तो ये अगर बिल्कुल आप बुराई के प्रति आवाज़ ना उठाएं तो बुराई का परिष्कार होना बहुत कठिन है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारना भी नहीं चाहते, स्वीकार करना भी नहीं चाहते। तो वैसी कंडीशन में अगर कोई दूसरा उसके बारे में कुछ एक्शन ना ले तो फिर वो बुराई बढ़ती चली जाती है। इसलिए समाज में भी ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है कि जो बुराई के प्रति संकेत कर सके, परिवार में भी ऐसे व्यक्तियों का होना ज़रूरी है कि जो बुराई को न पनपने दें। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन सावन के। और आगे का पंक्ति छूट गई। तो उन्होंने यही कहा कि आप अगर अपने पास में एक निंदक आलोचक रखते हैं तो इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपकी बुराई का परिष्कार होता रहता है। और बिना सावन और बिना पानी के ही आप स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो निंदक और आलोचक भी बुरे नहीं होते हैं, किंतु यदि निंदक और आलोचक का उद्देश्य ये हो जाता है कि सामने वाले को गलत दिखाना, उसको नीचा दिखाना, उसको अपमानित करना, तो वहाँ वो आलोचक भी गलत हो जाता है। अगर उसका उद्देश्य ये है कि इस व्यक्ति की गलती को सुधारना ताकि समाज में वो बुराई न पनपे, तो उसका वो उद्देश्य भी सही हो जाता है, वो आलोचक भी सही हो जाता है। तो निंदक भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। यही बात है कि उद्देश्य हम किस तरह का लेकर के चलते हैं। अगर हमारा उद्देश्य सही है तो वो एक्शन गलत होते होते भी सही हो जाती है, और उद्देश्य अगर सही है तो वो एक्शन गलत होते हुए भी सही हो जाती है। किंतु आलोचना यही है उपाय। हम पश्चक जब दृष्टा बन जाते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो उससे घटनाओं को देखने का नजरिया बदल जाता है। हम घटनाएं देखते हैं, उसको देखने के प्रति हमारा जो एक दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण बदल जाता है। पश्चक किस तरह से घटना को देखता है, तो उसके लिए एक सिंपल उदाहरण है कि हम टीवी में बैठते रोज प्रतिदिन टीवी में कुछ सीरियल भी देखते हैं, कुछ घटना चक्र भी देखते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या दुर्घटना हो रही है, बहुत बातें देखते हैं, बहुत सारे लोग हिंसक प्रवृत्तियों के कारण मारे भी जाते हैं, कहीं कुछ किसी वो दिखा दिया, एक सीडी दिखा दी, उससे कई लोग एक दूसरे को मार दिए, तो जातीय दंगे भी होते हैं, धार्मिक दंगे भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, और भी कारणों से होते हैं, तो हजारों लोग लाखों लोग मर जाते हैं उन दंगों के कारण से, कभी प्राकृतिक प्रकोप के कारण से, और हम टीवी पर उन सब सीन को देखते भी हैं कि कोई मर गया है, कोई मारा गया है, उन सब सीरियल्स को, उन चीजों को भी देखते हैं, किंतु फिर भी हम देखते समय अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? एक दर्शक की कैटेगरी में रखते हैं, और इसलिए आप दर्शक की भांति देखते तो हैं किंतु आप दुखी नहीं होते उस घटना को देख करके। सिंपैथी होना चाहिए, मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए कि कोई मारा जा रहा है, कोई निर्दोष मर रहा है, तो उसके प्रति आपके मन में करुणा संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है, किंतु एक जिस जो व्यक्ति अपना होता है उसकी मृत्यु हम सुन करके कितने दुखी हो जाते हैं, उस तरह से हम दुखी नहीं होते हैं जब हम दूसरों की मृत्यु को सुनते हैं। तो इसका कारण क्या है कि हम दूसरों की चीजों को बातों को देखते हैं तब एक दर्शक बन करके देखते हैं, एक दृष्टा बन करके देखते हैं, अपने आप को उससे अटैच करके नहीं देखते हैं। तो अटैच करने से, उसको अपना समझने से हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। घटना हो रही है उसको देखना, उसका क्या हो रहा, गलत हो रहा, सही हो रहा, उसका मूल्यांकन उस रूप में करना, ये गलत बात नहीं है, किंतु दुखी होना या सुखी होना, अहंकार से फूल जाना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे अंदर का भाव उस व्यक्ति के प्रति कैसा है, हम उससे कितने अटैच्ड हैं या नहीं हैं। तो दृष्टा जो होता है, दर्शक जो होता है, वो घटना को घटना की तरह देखने की कोशिश करता है, घटना को घटना के रूप में देखने की कोशिश करता है। हर चीज में हम प्रयास भी करें तो सफल नहीं होते, हम सोचते हैं कि हजारों लोग मर रहे हैं, हम कैसे उनको बचाएं, किंतु तो हमारा सामर्थ्य उतना नहीं है, हम जहाँ घटना होती है वहाँ हम उपस्थित नहीं होते, हो भी जाए तो हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम उन सबको बचा पाए, तो न्यूट्रल रहना पड़ता है बहुत सारी बातों में। किंतु दर्शक जो है, हम उपाधि नहीं होने का मतलब यही है कि घटना को जब हम घटना के रूप में देखते हैं और केवल उसका एक उचित समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तब हम घटना के बारे में सही समाधान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि उससे अटैच हो जाते, इमोशनल हो जाते हैं, तो ये घटना का हम समाधान खोजने की अपेक्षा घटना में उलझ जाते हैं और वो अपने लिए ही एक समस्या बना लेते हैं। व्यक्ति चला गया, अगर हम एग्रेशन करें, क्रोध में आ जाए, जिसने मारा है उसके उसके प्रति उत्तेजित हो जाए, उसको मारना तो ठीक है, उसके साथ उसकी पूरी कौम को ही खत्म कर दे, तो समस्याएं और बढ़ जाती है। तो घटना का हमें निदान करना जरूरी है, किंतु तो अगर हम एग्रेसिव बन जाते हैं उस घटना को देख करके, अपना आपा खो देते हैं, तो वही हम समस्या का समाधान खोजने की अपेक्षा उल्टा उलझ जाते हैं उसमें। तो भगवान महावीर का कहना है कि व्यक्ति जब ज्ञाता दृष्टा बनने लगता है, घटना को घटना की तरह देखता है, और फिर उसका क्या उचित समाधान हो सकता है, क्या उचित उपाय हो सकता है, वैसा करता है, तब तो ठीक है, वो समस्या से बाहर निकल सकता है। अगर वो उसको आपा भूल करके उस घटना को देखने लग जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, तो वही उल्टा समस्या को बढ़ा लेता है। तो उपाधि उन व्यक्तियों के अंदर होती है, क्रोध, आवेश आदि ये वृत्तियां उस व्यक्ति के अंदर होती है, और उससे होने वाली समस्या उस व्यक्ति के भीतर ज्यादा होती है जो घटनाओं को घटना की तरह देखना नहीं जानते हैं, उससे अटैच्ड हो जाते हैं। एक मकान चल रहा था, पिता को पता चला, वो घटनास्थल पर पहुंचे, देखा कि आग ऐसी लग गई है कि अगर फायर ब्रिगेड आता है तब भी शायद बचा पाना मुश्किल होगा, तो बहुत दुखी हो गए कि मकान अभी अभी बनाया था, अभी तो रहना शुरू ही नहीं किया था, उसका मुहूर्त ही नहीं किया था। तो उन्होंने अपने पुत्रों को, तीन बेटे थे, उनको सूचना भेजी कि कि भाई मकान जो है वो जल रहा है, अब क्या इसका उपाय किया जाना चाहिए। तो बड़ा बेटा आया, उसको लगा कि वास्तव में बचाना बहुत मुश्किल है। मझला बेटा पहुंचा तो देखा कि पिता और भाई दोनों ही बड़े दुखी दिखाई दे रहे, बहुत उदास है, हताश है। किंतु तो उसने कहा कि देखिए पिताजी, आप कह रहे थे कि ये मकान वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसलिए आप इसे बेचना चाहते थे। तो मैंने किसी व्यक्ति के साथ सौदा किया और इसलिए ये मकान उस व्यक्ति ने ले लिया है, हाँ भर दी है, इसलिए वो मकान अब अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अब उसका है। पिता चुपचाप चुप हो गए, बोले कि ठीक है, फिर अपनी चिंता की बात नहीं, मकान उसका है, उसको चिंता करना, हम क्यों दुखी हो रहे हैं बिना मतलब के। इतने में छोटा बेटा आता है, उसने कहा कि पिताजी बात ऐसी है कि बात तो की थी, पक्का भी हो गया था सौदा सब कुछ, किंतु रजिस्ट्री तो नहीं हुई थी, इसलिए उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया है जब उसको पता चल गया कि मकान को आग लग गई है, तो फिर दुखी हो गए। तो तीन घटना, मकान एक ही घटना घट रही, मकान जल रहा है। देखने के नजरिए कब बदलते हैं, दुख पैदा कब होता है, जब हम ये मान लेते कि ये मकान मेरा है। मकान तो मकान ही था, जब मेरा था तब भी मेरा था, मकान ही था, जब तेरा है तब भी मकान ही है, बट मेरा और तेरे का अंतर आ जाता है। मेरा है तो मैं, अटैचमेंट है मेरा, तब मैं दुखी बनती हूँ। मेरा नहीं है तो दुनिया में हजारों मकान रोज ही जल रहे हैं, कब दुखी होते हैं। हमारा तो एक घर भी थोड़ा सा भी कुछ जल जाए तो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये अटैचमेंट व्यक्ति को दुखी बनाता है। दुख का कारण जो है मेरापन है, मायने से। तो इमोशनल जब हम बनते हैं, अटैच्ड होते हैं, तब जा करके हमारे लिए वो समस्या बन जाती है। मकान जल रहा है, अब जो हमारे हाथ की बात नहीं है, बचाना संभव नहीं, वो तो जलेगा ही। अब तो इतना ही है कि बस उसको यही सोचो कि हमारे भाग्य में, हमारे योग में इतना ही था, वो चला गया, हम बचा नहीं पाए, हमारे पास कोई उपाय नहीं था उसको बचाने का। तो अब तो यही है कि उस घटना को समता से सहन करने की जरूरत है, कि अब हमने देख लिया कि हम बचा नहीं पाएंगे, तो फिर दुखी होने की बात नहीं है। अब हम दुखी होंगे तो भी मकान जल जाएगा, नहीं होंगे तो भी जलेगा, दोनों ही स्थितियों में मकान तो जलेगा ही। अब आपको दुखी रह करके उस परिस्थिति का सामना करना है, या न्यूट्रल होकर के उस स्थिति को समझना है कि ये हमारे अब बस की बात नहीं है। तो उपाधि उस व्यक्ति को, इमोशनल प्रॉब्लम उस व्यक्ति को ज्यादा होती है जो घटना को घटना की तरह नहीं देखता है। घटना की तरह देखने से वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके मन पर उस चीज का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। बुद्ध ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे, एक व्यक्ति उधर से निकला, उसने बुद्ध को देखा और सोचा कि ये क्या व्यक्ति है, अपनी पत्नी, अपने छोटे से बच्चे, बिल्कुल नवजात बच्चे को छोड़ करके निकल गया, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। साधु बनना था तो शादी क्यों की, पहले साधु बन जाते, और ऐसे शादी करके के बाद में पत्नी को मझधार में छोड़ करके संन्यास लेने का क्या मतलब है। तो उसको अच्छा नहीं लगा ये बुद्ध का, ये जो भी उन्होंने किया। तो उसने बुद्ध को ऐसी कई बातें कही कि तुम्हारे, मुझे इस साधुत्व में कोई अर्थ नहीं नजर आता है, जो दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को नहीं समझता है। बुद्ध ने सोचा कि ठीक है, अब व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, अब क्या किया जाए, संसार में उलझो तो उलझते चले जाओ, और निकलने की कोशिश करो, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका आलोचना भी हो सकती है। तो बुद्ध ने कुछ नहीं, वो बिल्कुल मध्यस्थ रहे, तटस्थ रहे, शब्दों को सुन लिया, क्या कहा जा रहा है उनको पूरा पता है, पर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब व्यक्ति चुप हो गया, जब एक ही तरफ से बात चलती है तो सामने वाला क्या बोले, दूसरा भी सामने वाला बोलने वाला हो तब उसको आर्ग्यूमेंट करने का मौका मिल जाता है, कोई पॉइंट मिल जाता है जिस पर वो आगे डिस्कस कर सकते हैं। और बुद्ध ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, तो वो सोचे कि अब क्या किया जाना चाहिए, कुछ चुपचाप हो गया। तो बुद्ध ने देखा अब शांत तो हो गया, तब आंखें खोलने में और कुछ कहने में मीनिंग है। सामने वाला उत्तेजित है, उस अवस्था में अगर कुछ कहेंगे तो सुनेगा तो है ही नहीं, वो आवेश में खुद ही है, उसकी सुनने की सामर्थ्य ही नहीं होती उस समय। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं होगा। बुद्ध ने शांत होने पर देखा कि बिल्कुल अब शांत हो गया है, अब कोई रिएक्शन नहीं है। तब आंखें खोल करके उन्होंने कहा कि तुम जो कहते हो तुम्हारी अपनी सोच की दृष्टि से ठीक ही है। उसको बुद्ध के चेहरे को देखा तो इतना शांति, आंखों में इतनी करुणा और इतने अच्छे ढंग से वो बात कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्या बात है, मैंने आपको इतना ऐसे शब्द कहे कि कोई भी उस एक भी शब्द सुन ले तो उसका आवेश प्रकट होने लग जाता है, उसमें उत्तेजना आ जाती है, और आप हमारे शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि मैं ही तुम्हें एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी के घर कुछ मांगने जाता है, सामने वाला कुछ देने की कोशिश करता है, किंतु जो वो चाहता था वो नहीं दिया जा रहा है, कुछ और ही दिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति ना कह देता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, फिर वो चीज किसके पास रहती है? तो देने वाला उसी के पास रह जाती है। तो इसी तरह से तुमने कुछ ऐसी बातें कही जिसका मुझे कोई अर्थ समझ में नहीं आता, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, मैं तो अपना घर छोड़ चुका हूँ, वापस लौटने से रहा, मैंने सोच समझ करके वो स्टेप उठाया है, तो मेरी दृष्टि से तो मैंने ठीक किया जो करना था मुझे, किंतु तुम्हारी दृष्टि में वो ठीक नहीं है। तुमने कुछ ऐसी बातें कही तुम्हारी समझ के हिसाब से, मुझे उसमें कोई अर्थ नजर नहीं आता, मैं अब उसमें कुछ करेक्शन करना नहीं चाहता। तो तुमने जो कुछ कहा उसको मैंने ग्रहण नहीं किया, वो शब्द तुमने जो कुछ बोले वो तुम्हारे तक ही सीमित रहे, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो मुझे रिएक्ट करने की जरूरत कहाँ रह गई? मैंने बस सुन लिया, जान लिया अमुक व्यक्ति कौन है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, उसका क्या इंटेंशन है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या लेवल है समझ कोई बात को समझने का, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया करें? तो प्रतिक्रिया तब होती है कि हम सामने वाले को कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हमारे लेवल का वो व्यक्ति नहीं है जिससे हम डिस्कस करें, तो ऐसे व्यक्ति की बात का हम पर असर भी नहीं हो तो अच्छा ही है। तो अगर हम सामने वाले के लेवल को समझ लेते, कई बार कुछ लोगों को ये रहता है कि हम कितना दूसरे की आदत बदलती नहीं है और उससे हमें परेशानी रहती है, तो मैंने कहा कि ये कोशिश करना चाहिए कि हमें जब किसी व्यक्ति के साथ रहना है, जिंदगी भर ही रहना है, तो हम उनसे अलग तो नहीं हो सकते, तो अब उसके नेचर को समझना जरूरी है कि वो किस नेचर का व्यक्ति है, उसकी कुछ टेंडेंसी होती है, कुछ चीज टेंडेंसी ऐसी होती है जो जन्मजात होती है, जन्म के साथ और मृत्यु के साथ ही हो जाती है, जन्म से प्रारंभ होती है मृत्यु तक रहती है, वो बदलने की कोई स्थिति में नहीं है, तो वैसी स्थिति में हमको उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसा ही है, बस खत्म कर दो। अब उसकी बात को अगर अपने ऊपर लोगे तो उसके तो लेवल वही है सोच का, आप उसको बदल नहीं सकते हो, और उनके शब्दों को लेकर कर उसको अपने मन पर लेकर के अगर सोचोगे कि इसने मुझे ऐसा कैसा कह दिया, तो वो तो वही कहेगा, उसे आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो, उसे वो आगे की बात कुछ ऊंची बात अच्छी बात कुछ कह नहीं सकता है। तो उसकी अपनी संस्कार है, उसकी अपनी वृत्तियां हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी वृत्तियों को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, अपने व्यवहारों को बदल सकते हैं, हम अपने को ही बदल सकते हैं, दूसरे को बदलना तो बहुत कठिन बात है। वो भावना में कहा है विनय विजय जी ने कि तीर्थंकर जो होते हैं वो भी न्यूट्रल रूप से धर्म का उपदेश देते हैं, उनको दुनिया का सब कुछ पता है कि मेरे सामने बैठा व्यक्ति कैसा है, किंतु वो इस भाषा में कभी नहीं बोलते कि तुम ऐसे हो कि तुम वैसे हो, वो तो बस केवल एक उपदेश देते हैं कि देखिए ये जीवन जीने का सही तरीका ये है, अब आपको समझना चाहिए कि मेरे में ये बुराई है तो मुझे करेक्ट करना है। वो खुद भी किसी को, उनके पास में अनंत बल होता है, अनंत शक्ति होती है, एक सामान्य व्यक्ति भी थोड़ी साधना कर लेता तो उसके वचन का इतना प्रभाव बढ़ जाता है, वो कुछ कहता है तो सामने वाले पर उसका बहुत असर होता है, तीर्थंकर तो कितने अतिशयधारी होते हैं, उनकी वाणी का कितना प्रभाव होता है, किंतु वो भी कहते हैं कि भाई हम केवल उपदेश दे सकते हैं, शिक्षाएं दे सकते हैं, दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, बदलने का जिम्मा कोई नहीं ले सकता है, बदलेगा व्यक्ति अपने स्वयं के संकल्पों से, स्वयं को आत्मनिरीक्षण करेगा, स्वयं को देखेगा तो ही उसमें परिवर्तन होगा। जब तक वो स्वयं का पश्चक नहीं बनता, स्वयं का दृष्टा नहीं बनता, स्वयं को नहीं देखता है, तब तक उसमें परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं बनती है। दूसरा देख भी ले तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है तुम्हारी दृष्टि खराब है, मुझे तुम ऐसे ही देखते हो, तुमको वो अच्छा कभी दिखाई नहीं देता है। तो सामने वाले को ही उल्टा दोषी ठहराता है, दोष उसमें है किंतु वो सामने वाले में बताता है। तो वैसी कंडीशन में हम किसी में सुधार नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर के जमाई थे कौन? जमाली, उनकी बेटी प्रियदर्शना दीक्षित हुए थे भगवान महावीर के पास, और जवाई ही भगवान महावीर से अलग हो गए। इसी विचार को ले, मतभेद को लेकर, एक सिद्धांत को लेकर मतभेद हो गया, और या फिर जीवन भर ही वो महावीर से नहीं मिल पाए। तो तीर्थंकरों की भी ये महिमा है कि उनके अपने ही जवाई उनकी बात से सहमत नहीं हुए, इनके सिद्धांत से सहमत नहीं हो पाए। तो ऐसे खुद के ही फैमिली के व्यक्ति भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते जो कि तीर्थंकर थे, जिनकी तो महिमा इतनी थी, है ना। और खुद के ससुर थे एक तरह से जवाई होने के बहाने, किंतु उनकी बात को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो कोई किसी को सुधार नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है, बदलना व्यक्ति के अपने अधीन होता है। तो हम रिएक्ट क्यों करें? सामने वाले को हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए किसी की बात को सुन करके, किसी के व्यवहार को देख करके, किसी के मिसबिहेवियर जो हमारे साथ हुआ उसको सोच करके हम अगर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अगर कुछ नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर आती है, तो ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी वगैरह ये सब कुछ आने का मतलब है कि आप सामने वाले को ढंग से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। सबको अगर हम पश्चक सही ढंग से बने तो सामने वाले का हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है, इसका थिंकिंग लेवल क्या है। तो ऐसी कंडीशन में इससे हम ज़्यादा ये आशा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी बात को रिएक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति पश्चक बनता है, सही ढंग से घटना को देखता है, सही ढंग से उसका एनालिसिस करता है, सही प्रॉपर रीजनिंग के साथ किसी चीज़ को समझने का कोशिश करता है, तो उसके मन पर उस घटना का विशेष असर नहीं होता है। थोड़ा असर हो भी जाए तो उसको ख़त्म कर सकता है, उसकी गांठ नहीं बांधता है, निर्ग्रंथ रह सकता है। जैन धर्म निर्ग्रंथता पर बल देता है, गांठे मत बांधो, हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई कुछ कहे तो हमें रिएक्शन नहीं होता है, हो सकता है, किंतु गांठे बांधने की ज़रूरत नहीं है। होता है सब साथ में रहते हैं, कोई अपने को मिसअंडरस्टैंड करता है इसलिए उसके विचार उसी ढंग के होते हैं, हम उसे समझाने की कोशिश करें फिर भी ना समझे तब उसका हमारे कोई बस की बात नहीं है, किंतु हम उसकी बात को लेकर के गांठ ना बांधे कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, करना उसका हक की बात है और स्वीकार करना नहीं करना वो हमारी बात की बात है। आचार्य जी कहते कि धार्मिक की पहचान क्या है, कि वो परिस्थिति को देखता है किंतु अपने ऊपर लेता नहीं है जल्दी से, इसलिए वो दुखी नहीं बनता। दुखद परिस्थितियाँ धार्मिक के जीवन में भी आती है और एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी आती है, किंतु धार्मिक व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी नहीं बनता है। और जो अधार्मिक होता है, कॉमन मैन होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग चूँकि उस रिलीजियस दृष्टि से नहीं होती है, तो वो बहुत जल्दी उस घटना से दुखी बन जाता है। एक बार उनके पैर में ही कांटा लग गया, उन्होंने उस घटना को लेकर के ही एनालिसिस किया कि दुख का होना और दुख का अनुभव करना ये दो चीज़ है। पैर में कांटा चुभा तो दर्द तो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि दर्द नहीं होगा, किंतु फिर उस कांटे से दुखी हो जाना कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो ऊहा पोह करना, अपने आप को ये महसूस करना कि मेरे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो वैसी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, पीड़ा हो रही है, किंतु अगर व्यक्ति पश्चक बन जाता है तो उस पीड़ा को भी देखने लग जाता है। तो वो कहते हैं कि दुख तो होता है किंतु दुख का अनुभव नहीं करते हैं, दुखी खुद नहीं होते हैं, मैं दुखी नहीं हो रहा। उन्होंने आत्मा के संदर्भ में एक गीत बनाया और उस गीत में यही है कि मैं मुक्त मृत्यु के भय से, ना मुझको व्याधि सताती, ना कष्ट अब मुझे अब छूते, चेतन धारा लहराती, संवेदन की भूमि से ऊपर अब हम उठ पाए। तो वो कहते हैं कि जब व्यक्ति आत्मदृष्टा बन जाता है तो उसको ये भी पता चल जाता है कि मैं तो अमर हूँ, इसलिए मृत्यु का भय भी उसमें खत्म हो जाता है। शरीर में व्याधि होती है, बीमारी होती है, उससे वो दुखी नहीं बनता क्योंकि उसको मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए शरीर में कोई व्याधि हुई तो उसको ठीक करना, घर में अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो रिपेयर करवाते हैं, वैसे ही ये आत्मा के लिए घर है ये शरीर। तो घर में कोई टूट फूट हो गई तो उसकी रिपेयरिंग करवाने की बात सोच सकते हैं, किंतु घर को में कुछ टूट गया इस बात को लेकर दुखी नहीं होते अपन जल्दी से। शरीर में कुछ होता है तो उसका दुख होता है थोड़ा, किंतु मकान को लेकर के हम दुखी नहीं होते। ऐसे ही मकान शरीर जो है हमारा एक तरह से घर है, वास्तव में तो ये भी घर नहीं है, पर सपोज हम इसको ये माने कि ये घर की तरह है। तो टूट फूट हो जाती है तो उसको वो ये समझते कि शरीर में इस तरह का कष्ट होता है। तो जितने भी योगी होते हैं, महान साधक होते हैं, आत्मदृष्टा होते हैं, उनसे अगर कोई बीमारी हो भी जाती है, कैंसर तक के रोग हो जाते हैं, किंतु उनसे अगर पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आपको स्वस्थ हैं कि नहीं है, तो बोले मैं तो खुश हूँ, शरीर में थोड़ा बहुत दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। तो वो अपनी बीमारी का संबंध शरीर के साथ रखते हैं, आत्मा के साथ नहीं रखते हैं, आत्मा को उससे अलग मानते हैं, क्योंकि आत्मा का विलक्षण क्या है? आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, वो जो हम पढ़ाया, आत्मा असल अजर शाश्वत। तो शरीर जो है वो बूढ़ा नहीं होता है, वो अजर है, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं आता है, वो अमर है, वो मरता नहीं है। तो आत्म तत्व है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती है, वो अरुज है, उसमें कोई रोग नहीं होता है, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं होता, उसमें कोई मृत्यु नहीं होती है। तो जो दर्शक हो जाता है उसको ये पता होता है कि मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए बुढ़ापा, रोग, बीमारी या ये मृत्यु, इसका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो वो मृत्यु के समय भी खुश रहता है, उस समय भी दुखी नहीं बनता है। नहीं तो मृत्यु के समय तो व्यक्ति का चेहरा बहुत उदास हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, सोचता है कि सब कुछ छूट रहा है, किंतु वो उस समय भी ये सोचता है कि अच्छा है, शरीर का बंधन, एक बंधन छूटा, एक शरीर कम हुआ आगे की यात्रा में। तो जो आत्मदृष्टा होते हैं उनको मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, उनको बीमारी का संवेदन भी कम हो जाता है। संवेदन की भूमि से ऊपर अब हम उठ पाए। संवेदन का मतलब सुखी बनना, दुखी बनना। संवेदन का मतलब होता है ज्ञान करना भी। इंद्रियों से हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो ये भी एक संवेदन कहलाता है, इसको ज्ञान कहा जाता है। किंतु एक संवेदन का मतलब होता है सुखी दुखी बनना, फीलिंग्स। तो ये जो हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती है, सुखी सुखी होने की, दुखी होने की, ये फीलिंग्स भी तब पैदा होती है जब हम अपने को शरीर समझ बैठते हैं और शरीर की व्याधि को अपनी व्याधि समझ बैठते हैं, और तभी हम फिर सुखी और दुखी बनते हैं। क्योंकि शरीर बीमार हो गया इसका मतलब मैं ही बीमार हो गई, जबकि मैं बीमार नहीं होती हूँ, शरीर बीमार होता है। तो जो व्यक्ति आत्मदृष्टा होता है उसको न तो आधी होती है, न व्याधि होती है, न उपाधि होती है। आधी व्याधि तो हमें इजीली हम उसको क्लियर कर लेते, बट उपाधि हमको समझ में नहीं आती कि इसका क्या निदान किया जाए। तो उपाधि, इमोशनल होना, एग्रेसिव होना, ये सब स्थितियां तभी व्यक्ति के अंदर बनती है जब घटनाओं को देखने के साथ व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। अगर वो इमोशनल ना रहे तो वो अपने आप में वो संतुलित रहता है और समस्या का शायद बहुत अच्छा समाधान वो खोज सकता है। शांत चित्त से जितने अच्छे समाधान मिलते हैं, उत्तेजना में कभी भी वो समाधान नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो हमारी जो पवित्र चेतना है, सोचने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, देखने की जो सामर्थ्य है घटना को आगे के लिए, वो सामर्थ्य हमारे आवेश के जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा वो पोल्यूट हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, वो अपने मूल स्वरूप में रह नहीं पाती, वो शक्ति अपने स्वरूप में काम नहीं करती है। तो जब मोह के परमाणु या इमोशंस, जब नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर हावी होते हैं, उस समय हमारी चेतना की जो सोचने की, समझने की और समाधान करने की शक्ति होती है, वो शक्ति बहुत प्रभावित होती है। इसलिए हम उस परिस्थिति में कितना भी कोशिश करें, समाधान इतना अच्छा नहीं खोज सकते हैं जितना हम शांत अवस्था में खोज पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी चेतना निर्मल रहती है, उसको देखने का, समझने का उसका सामर्थ्य जो है वो सही ढंग से, सही रूप में काम करता है, वो पावर सही रूप में काम करती है। तो उपाधि से बचने का, इमोशंस से बचने का, यहाँ इमोशन का मतलब नेगेटिव इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशन जिसको हम करुणा, संवेदनशीलता ये सब कहते हैं, ये पॉजिटिव है, ये आत्मा के गुण है, ये वो इमोशन नहीं है जिनको हमने त्यागना है, इनका तो हमें विकास करना है। किंतु जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे हम तब छुटकारा पा सकते हैं जब हम पश्चक बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, एक दर्शक की भूमिका में खड़े होकर के घटना को देखना सीखें, तो घटना को देखने के साथ साथ में उसका हम समाधान भी खोज सकते हैं और उस घटना का हमारे ऊपर जो होने वाला दुष्प्रभाव है हम उसको भी रोक सकते हैं। तो ये ज्ञाता दृष्टा बनना, ये जैन धर्म का मूल शिक्षा है। हम कुछ भी करें, सामायिक करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, तप करें, जप करें, सब कुछ करें, किंतु यदि हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप के निकट नहीं रहे तो वो बहुत कुछ बाहर का किया हुआ क्रियाकर्म का प्रभाव कुछ सीमा तक तो होता ही है और उसका लाभ ही है, किंतु हमें मूल स्वरूप तक पहुँचना है और मूल स्वरूप पहुँचने के लिए हमें ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करना है, प्रेक्षा का विकास करना, देखने की शक्ति का विकास करना है। ऐसी देखने की शक्ति जो इमोशंस से मुक्त हो, क्रोध मान माया के जो इमोशंस है वो इसमें मिक्स ना हो, उस प्योर स्टेट में अगर हम घटनाओं को देखेंगे तो निश्चित ही घटना भी हमें घटना के रूप में दिखाई देगी और उसके लिए हम कुछ अच्छे प्रयास भी कर सकते हैं और भविष्य के लिए हम सावधान भी रह सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिया था कि उवाही पास गसन थी, हम दर्शक बने, हम दृष्टा बने, दृष्टा बनने की जो कला है वो यही है कि हम जब कभी कुछ देखें, कुछ करें, तो राग द्वेष की चेतना के साथ उसको देखने की कोशिश ना करें, राग द्वेष मुक्त चेतना से देखने की कोशिश करें, वही ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास है। तो जब जब हम राग द्वेष के से मुक्त होकर के देखने की कोशिश करेंगे तो हमें घटना सही अर्थ में दिखाई देगी, उसका पूर्ण पिक्चर हमारे सामने आएगा, नहीं तो हम आधा पिक्चर देख करके रिएक्शन करने लग जाते हैं, पूरी बात को सुनते ही नहीं है, सामने वाला क्या कह रहा है इस बात को ही नहीं सुनते हैं और इसलिए घटना का आकलन करते हैं तो आधा अधूरा आकलन करते हैं और फिर वो आधा अधूरा आकलन जो है वो ज़्यादा नई समस्याएं पैदा कर देता है। तो व्यक्ति अगर शांत चित्त रहे तो वो अच्छी तरह से पेशेंटली कम से कम सबको सुन सकता है। ज्ञानी पुरुषों ने इसीलिए कहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति कुछ काम करे तो वो इस बात का जरूर अभ्यास करे कि वो सुने सबकी। हम सुनना ही नहीं चाहते, हम अपनी ही सुनाना चाहते हैं, सुने सबकी फिर निर्णय अपने मन से ले। ये भी नहीं कि इसने कह दिया तो मैंने, तो मेरी बुद्धि अगर काम नहीं करेगी तो कल मेरे सामने कोई ऐसा प्रश्न आ गया, अगर मैं अपनी बुद्धि से उसका निर्णय नहीं करती हूँ तो कल से कोई प्रश्न आ गया तो मेरे को समाधान देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी उधारी बुद्धि से काम ले रही हूँ, दूसरों ने मुझे सजेस्ट किया इसलिए मैं वो स्टेप ले रही हूँ, किंतु अगर मैं उसको सोच समझ करके, प्रॉपर ढंग से समझ करके उसको, उस चीज को लेती, उस एक्शन को लेती हूँ तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसका आंसर कर सकती हूँ और आगे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो व्यक्ति मेरे सामने हमेशा तो नहीं रहेगा, मुझे को डील करना है वो चीज़। तो निर्णय खुद करें किंतु सुने सबके, सुनना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आई ये संभव नहीं है। कहा जाता है कि टू माइंड्स थिंक बेटर देन वन। एक अकेला दिमाग से व्यक्ति कितना भी लड़ा ले अपने दिमाग को, सारे कॉस एंड पॉइंट्स देखना बहुत मुश्किल है, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हर चीज़ का देखना बहुत मुश्किल है, किंतु अगर दूसरों के साथ वो डिस्कस करता है या अपने साथियों के साथ या जो उस कार्य के साथ जुड़े हुए उन सबसे सलाह मशवरा करता है तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सामने आती है। हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से कभी कभी कुछ घटना देख लेते हैं किंतु उस चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो निर्णय हमारे लिए आगे जा कर के घातक हो जाता है। तो हमको सुनना सबको ही चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, किंतु निर्णय की जहाँ स्थिति हो वहाँ खुद को भी जागरूक होकर के समझ करके निर्णय लेना चाहिए। तो ये सब स्थितियां तभी बन सकती है कि जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहे, सोचते या निर्णय करते समय हम राग द्वेष की दृष्टि से ना करें कि मैं कोई किसी पद पे हूँ या किसी संस्था से जुड़ी हुई या किसी सभा से जुड़ी हुई, इसलिए ऐसा सोच करके नहीं कि एक सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए और जिस प्रयोजन से हम जो काम कर रहे हैं उसका जो उच्च उद्देश्य है उसको ध्यान में रख करके अगर हम निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सदा हमारे लिए भी कल्याणकारी होता है और जो उस कार्य के साथ जुड़े हुए उन लोगों को भी उससे सेटिस्फेक्शन होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ में, समय अभी 10 मिनट है, अगर कुछ आपके प्रश्न उत्तर हो, चूंकि आप सुनते ही सुनते हैं कहीं प्रश्न भी करें तो ज्यादा अच्छा रहे कि कुछ बातें हम कहते हैं कुछ बातें स्पष्ट होती है नहीं भी होती, या कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम भी है। हाँ बढ़िया। संवत्सरी को सभी को फास्टिंग रखना है, कोशिश ये करना है कि चोवियार करें बिना जल के, उस दिन पौषक का अभ्यास करें, जैसे जूस लोग से बर्थडे करते हैं वैसे पौषक दिन, परंपरा में पौषक का है कि फुल डे और नाइट धर्म के प्रति समर्पित रह करके धार्मिक क्रियाओं में लगे रहें और एक तरह से साधु या संन्यास का जीवन जिए, ना नो इलेक्ट्रिसिटी, नो बिजनेस, नो वर्ल्डली एक्टिविटीज। तो ये पौषक का परंपरा जैन परंपरा में रही है। भगवान महावीर बहुत इस मामले में कहना चाहिए एडवांस्ड थिंकर थे, इसलिए उन्होंने जैन लोगों को ध्यान में रख करके कि ये सप्ताह में जूग लोगों की तरह हर सप्ताह तो चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे, तो उन्होंने 15 दिन में एक दिन चुप बैठने के लिए कहा है। और पौषक का तो भगवान महावीर के समय तो बड़े बड़े राजा पौषक करते थे 15 दिन में एक दिन बैठ करके। कुमारपाल राजा 18 देशों के राजा थे, उस समय देश का मतलब राज्य, और अष्टमी को पोषित किया करते थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे एक तरह से। तो राजा भी जब पोषित के लिए समय निकाल सकते थे भगवान महावीर के समय में, तो इस समय तो आप भी निकाल सकते होंगे शायद, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा राज्य साम्राज्य तो आप नहीं संभाल रहे होंगे जितना कुमारपाल भाई संभालते थे। तो कम से कम